लब्धिसार ग्रंथ के आधार से यहाँ हम पंच लब्धि संबंधी चर्चा कर रहे हैं। आज हमने घाती कर्मों में जो सर्वघाती प्रकृति होती है और देशघाती प्रकृति होती है उसकी चर्चा की थी। हमने यह भी देखा था कि सर्वघाती प्रकृति के सभी स्पर्धक, अब कभी मैं प्रकृति बोल रही हूँ कभी स्पर्धक बोल, सर्वघाती प्रकृति के सभी स्पर्धक कैसे होते हैं? सर्वघाती ही होते हैं, परंतु देशघाती प्रकृति के स्पर्धक सर्वघाती भी है और देशघाती भी है। जब देशघाती का उदय है और सर्वघाती स्पर्धकों का उदय नहीं है, कौन सी प्रकृति की बात चलिए, देशघाती प्रकृतियों के सर्वघाती का उदय नहीं हो और देशघाती का उदय हो, जैसे मति ज्ञानावरण में हमने देखा था, तब उसको कहेंगे क्षयोपशम, क्योंकि सर्वघाती है वो देशघाती रूप से उदय में आते हैं, तब वो ज्ञान भी चलता रहेगा और उसका देशघाती का उदय भी चलता रहेगा। ऐसी अवस्था को क्षयोपशम कहते हैं। कोई कोई देशघाती प्रकृतियां होने पर भी, जैसे अवधि ज्ञानावरण है, उसके सर्वघाती स्पर्धकों का उदय होता है तो वो विशिष्ट ज्ञान प्रकट नहीं है, जैसे अवधि ज्ञान नहीं है, जैसे हम आपको अभी अवधि ज्ञान नहीं है, तो क्या है अवधि ज्ञानावरण, देशघाती प्रकृति होने पर भी उसके सर्वघाती स्पर्धकों का उदय चल रहा है। इतनी बात हमने आज देखी है। अभी हम सर्वघाती प्रकृति और देशघाती प्रकृतियों की थोड़ी लिस्ट देखते हैं। यह मेरे में हिंदी में 54 पृष्ठ है, आप में 2-3 पेजेस कम हो गए, पूरी वहाँ लिस्ट बताई है, 51 नंबर पे। देखो, मूल प्रकृति है ज्ञानावरण और उसके जो भेद हमने 5 प्रकार के देखे थे, उनमें से सर्वघाती प्रकृति कौन कौन सी है, तो वहाँ लिखा है केवल ज्ञानावरण, ये सर्वघाती प्रकृति है। और देशघाती में किसको लिया, अन्य 4 को, मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण और मनःपरेय ज्ञानावरण। इसकी बात हमने बहुत की थी विस्तार से। अब दर्शनावरण की बात देखते हैं। उसमें केवल दर्शनावरण ये सर्वघाती प्रकृति है और अन्य जो 5 प्रकार के निद्रा नाम के कर्म हैं, वे भी सर्वघाती प्रकृति है। यानी जब जब निद्रित अवस्था है तब इनका उदय है, किसी न किसी का, 5 निद्रा में से किसी का उदय है, तब वो सर्वघाती स्पर्धकों का उदय है। यानी क्या, जागृत अवस्था बिल्कुल नहीं है। अब देशघाती में किस किस को लिया, अन्य 3 जो रिमेनिंग 3, चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण और अवधि दर्शनावरण। अब मोहिनी के बारे में देखते हैं। 2 प्रकृति है मोहिनी की, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। उसमें जो मिथ्यात्व नाम का कर्म है वह सर्वघाती प्रकृति है। मिथ्यात्व में कोई भी देशघाती स्पर्धक नहीं है, यानी मिथ्यात्व का क्षोभशम हो जाए ऐसा नहीं होता। मिथ्यात्व कर्म का उदय है, इसका अर्थ क्या है, सम्यक्त्व का पूरा घात है वहां पर। वैसे ही सम्यक मिथ्यात्व कर्म जो है, हमने पहले देखा था उसके उदय में तीसरा गुण स्थान होता है, परंतु वहां सम्यक तो बिल्कुल नहीं रहता, अन्य जाति का परिणाम हो जाता है, सम्यक तो नष्ट हो जाता है उसका। तो ये दोनों ही सर्वघाती प्रकृति है, परंतु सम्यक प्रकृति ये देशघाती प्रकृति है। देखो, परंतु एक बात यहाँ ख्याल में रखना, ज्ञानावरण में हमने क्या देखा था, जो जो देशघाती प्रकृति है उसके सर्वघाती भी स्पर्धक है और देशघाती भी स्पर्धक है, परंतु ये दर्शन मोहिनी की ये विशेषता है कि जो मिथ्यात्व नाम का ओरिजिनल कर्म जो बंधा हुआ था वो सर्वघाती है, वो डाइल्यूट होकर सम्यक मिथ्यात्व बना वो भी सर्वघाती है, परंतु उसमें से भी अनुभागहीन होकर सम्यक प्रकृति जो बनी है वो देशघात प्रकृति देशघाती है और उसके स्पर्धक भी देशघाती ही है। यानी सम्यक प्रकृति में कोई भी सर्वघाती स्पर्धक नहीं है, ये बात ख्याल में आई। एक बात और ख्याल में लेना, जैसे हमने घाती कर्म इन जनरल में सर्वघाती स्पर्धक कौन कौन से देखे, शैल, अस्थि और दारू का बहुभाग। अब मिथ्यात्व में भी शैल, अस्थि और दारू का बहुभाग जो है वो पूरा नहीं लेना, वो बहुभाग वाला का नीचा नीचे का थोड़ा एक भाग अलग रखना। और क्यों, वो जो नीचे का एक भाग है उसमें सम्यक मिथ्यात्व के परमाणु उस रूप हो जाते, और ये जो प्रकृति है कौन सी, सम्यक प्रकृति, उसमें कौन से स्पर्धक है, वो लता वाले और दारू वाले एक भाग वाले। अन्यत्र हमने क्या देखा था, देशघाती प्रकृति में सर्वघाती भी स्पर्धक होते हैं, देशघाती भी होते हैं। सम्यक प्रकृति स्पेशली बाद में तैयार हुई है ना, वो देशघाती प्रकृति ही तैयार हुई है, उसके स्पर्धक देशघाती है, इतनी बात ये विशेष ख्याल में लेनी है। अब चारित्र मोहिनी में देखते हैं, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ ये सर्वघाती प्रकृति है, वो किसका घात करती है, सम्यक्त्व का पूरा घात है, तो चारित्र मोहिनी है, परंतु ये मिथ्यात्व के साथ साथ काम करती है, सम्यक्त्व होने नहीं देती। अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यान का अर्थ होता है त्याग, अप्रत्याख्यान यानी थोड़ा त्याग, और थोड़ा त्याग उसके ऊपर भी आवरण, यानी थोड़ा भी त्याग नहीं होने देती। चौथे गुणस्थान वाले को अप्रत्याख्यानावरण का उदय है तो उसको थोड़ा भी त्याग नहीं है, अविरति है, अविरत गुणस्थान है ना, वो भी सर्वघाती है, अपने प्रतिपक्ष का घात करते हैं। प्रत्याख्यानावरण यानी प्रत्याख्यान यानी त्याग और उसके ऊपर आवरण, मुनि योग्य यहाँ त्याग नहीं है, तो पांचवे गुणस्थान वाले को प्रत्याख्यानावरण का उदय है तो उसके सकल संयम नहीं है, तो ये भी सर्वघाती प्रकृति है। और ये संज्वलन की कैसी है, देशघाती प्रकृति है, यानी संज्वलन कषाय का उदय होते हुए भी मुनियों का जो सकल चारित्र है वो भी बना रहता है, उसमें बाधा नहीं आती, ये देशघाती प्रकृति है। और नौ नौ कषाय ये भी सारे देशघाती प्रकृतियां हैं। अंतराय की सभी प्रकृतियां देशघाती हैं। इस तरह से यहां ये तो कौन कौन सी है इसकी इतने ही देखना है हमें, 21 प्रकृतियां हमने सर्वघाती रूप से देखी है और बाकी जो 26 है वो देशघाती प्रकृति है। हाँ,
सम्यक मिथ्यात्व स्पर्धक रहते हैं ना, उसमें शैल, अस्थि और दारू का एक
सब नहीं, सम्यक मिथ्यात्व की बात पूछ रहे ना। हाँ। सम्यक मिथ्यात्व में एकमात्र दारू भाग वाले ही होते, वो भी लोअर डाउन। हाँ। हमने उसमें जो देखे थे ना, ऊपर के जो तीव्र अनुभाग वाले नहीं, उसमें से सर्वघाती वाले भी, परंतु उसमें मिनिमम वाले।
मिथ्यात्व में
शैल, अस्थि और दारू बहुभाग, बहुभाग का भी ऊपर का भाग, नीचे का थोड़ा छोड़कर, कि नीचे का जो थोड़ा है सर्वघाती वाला थोड़ा, वो सम्यक मिथ्यात्व वाला है। हम बढ़ेंगे आगे अभी, और हम अलग इसमें से क्षयोपशमिक भावों की भी चर्चा की है, उसको हम छोड़कर हम आगे बढ़ेंगे। क्षोभशम क्या है इतना हमने देख लिया है, अब ये अपकर्षण उत्कर्षण क्या होता है उसको देखते हैं। उसी पृष्ठ पर बाकी आगे जो फिगर दिखा है ना, तो यहाँ अपकर्षण उत्कर्षण जो लिखा है उसके नीचे हम पढ़ेंगे, वो डायग्राम के नीचे। जीव के परिणामों के निमित्त से जब सत्ता में पड़े हुए कर्मों की स्थिति और अनुभाग घटता है उसे अपकर्षण कहते हैं।
51 के बॉटम पैराग्राफ
मिला ना सब। क्या होता है हमने देखा है, जब जीव कर्म बांधता है तो विशिष्ट स्थिति उसमें पड़ती है और वो सत्ता में पड़े रहते हैं, तो परिणामों के वश क्या होता है उसमें से कुछ परमाणु नीचे आ जाते हैं, उनकी स्थिति घटकर नीचे के निषेकों में वो परमाणु आ मिलते हैं, उसको कहते हैं अपकर्षण। और कभी कभी क्या होता है कि थोड़ी स्थिति है और जीव के कुछ परिणाम अलग हो रहे हैं और नया बंध अधिक स्थिति वाला होता है, तो नीचे के कुछ परमाणु ऊपर ज्वाइन हो जाते हैं तो उसकी स्थिति बढ़ जाती है, उसको कहते हैं उत्कर्षण। उत्कर्षण ने बढ़ना, अपकर्षण ने घटना, तो उसको यहाँ चार्ट द्वारे हम देखते हैं।
स्थिति सेम इस स्थिति का सरण, क्या उसको बोलते हैं, स्थिति का अपसरण, इस इज द सेम थिंग।
स्थिति का यहाँ स्थिति कांडक घात ये शब्द एक आता है, और
स्थिति
बंधापसरण अलग बात है, वो स्थिति बंध का घटना उसको स्थिति बंधापसरण कहते हैं। आपने शायद आगे का पढ़ा होगा ना, ये नया नया जो स्थिति बंध होता है वो जब घटते हुए चला जाता है, क्यों, जीव जब तत्व विचार करता है तो अधिक स्थिति नहीं बनती है, कम स्थिति बनेगी। देखिए पुण्य प्रकृति होगी तो उसमें जब तत्व विचार के काल में पुण्य प्रकृति बनती है मोस्टली, और उसकी स्थिति कम बनती है, और जब तीव्र कषाय होते हैं तो पाप प्रकृतियां बनती है और उसकी स्थिति भी लंबी बनती है। अब ये जो बंधापसरण वगैरह की बात क्रम से आगे आएगी प्रायिक लब्धि के काल में, तब उसकी अधिक चर्चा करेंगे, अभी तो इतना ही समझना स्थिति बंध घटते हुए चले जाता है उसको कहते हैं स्थिति बंधापसरण, वो बात यहाँ नहीं है। यहाँ ऑलरेडी सत्ता में जो कर्म है उनकी स्थिति घटती चली जाती है, वो कैसे घटती है, उसमें क्या प्रोसेस होते है, उसके नाम क्या है, उसकी क्रम से बात आएगी आगे। अभी आगे का पैराग्राफ छोड़ कर, क्योंकि हमने उसको देखा है। अब स्पर्धक जो हमने देखा था, देखो स्थिति का चार्ट कौन बताते है, वो निषेक रचना, तो हम ऊपर से नीचे ऐसा बताएंगे, और अनुभाग को बताने वाले ये स्पर्धक रचना जो हमने कल देखी है, गोले गोले दिखाए थे ना, तो उसमें अनुभाग का घटना उसको भी हम अपकर्षण कहेंगे, वो अनुभाग में कम हुआ। स्थिति का घटना ऊपर के निषेक में से परमाणु नीचे आए, अनुभाग का घटना हो सकता है कि नीचे के ही निषेक में अधिक अनुभाग था वो कम हुआ, तो उसको हम कहेंगे अनुभाग का घटा। जैसे अभी हमने सर्वघाती है वो देशघाती हुए, तो क्या हुआ वहां, अनुभाग घट गया, वहां स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं कहा था, अनुभाग घट गया था। ऐसे जहां जो होता है उसको वहां समझेंगे। अभी ये जो स्थिति का घटना होता है ना, कभी कभी क्या होता है निषेक तो उतने के उतने बने रहते हैं और कुछ परमाणु ऊपर के निषेक में से निकलकर स्थिति घटती है और नीचे के निषेक में आ मिलते हैं, जैसे हमने देखा था वो क्यू छोड़कर वो आगे आते हैं। और कभी कभी क्या होता है ऊपर के बहुत सारे निषेकों के सभी परमाणु एक लॉट दूसरा लॉट तीसरा लॉट ऐसे छोटे काल में सबके सब पूरा इतना कांड कहने मान लेते पल्लों की या सागरों की स्थिति थी और उसके एकदम घट होकर एक छोटे अंतर्मुहूर्त में सभी के सभी निषेक घट जाते हैं, उसको कहेंगे कांडक घात। ये दो शब्द अभी केवल ख्याल में रखना, उसकी अधिक चर्चा हम आगे करेंगे जहां उसका प्रकरण आएगा, या तो केवल हम उसके पारिभाषिक शब्द देख रहे हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे, आगे का प्रकरण ले लेंगे। अब प्रथमोपशम सम्यक, तो यानी जहां ये अभी विषय शुरू होता है यहां से, अभी तक तो इंट्रोडक्शन हुई थी तो ये प्रथमोपशम सम्यक तो क्या है और कौन सा जीव उसको प्राप्त कर सकता है उसकी बात यहाँ होती है। पहले में पहले प्रथमोपशम किसे कहना, या प्रथमोपशम सम्यक तो किसे कहना, क्या पहली बार होता है इसलिए उसको प्रथमोपशम कहते हैं और दूसरी बार होगा तो उसको द्वितीयोपशम कहेंगे, ऐसी बात नहीं है। दो शब्द आते हैं प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम। जब जब मिथ्यात्व में से जीव सम्यक तो प्राप्त करता है और वहां कर्मों की अवस्था कौन सी होती है, उपशम होती है, वो क्या होता है वो भी देखेंगे। तो कर्मों का उपशम करके जब सम्यक तो प्राप्त होता है, मिथ्यात्व में से कर्मों का उपशम करके सम्यक तो हुआ तो उसको कहेंगे प्रथम उपशम। अभी कोई जीव सम्यक दृष्टि है ऑलरेडी, कौन सा वेदक यानी क्षोपशम सम्यक तो है, और जब श्रेणी चढ़ता है आठवां नौवां दसवां ग्यारहवां गुणस्थान होता है तो तब वो दोबारा उपशम करता है तो उसको कहेंगे द्वितीय उपशम। अपना कौन सा प्रकरण है, मिथ्या दृष्टि जीव कर्मों का उपशम करके, कौन से कर्म, तभी मिथ्यात्व यानी दर्शन मोहनीय कहेंगे हम, और अनंतानुबंध इतनी, बाकी कर्मों में वो कुछ नहीं करता है। तो दर्शन मोहनीय में से किसी के एक मिथ्यात्व होगा, किसी के तीनों हो गए, हम केवल अभी मिथ्यात्व की बात करेंगे। एक मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का उपशम करके मिथ्यात्व में से वो सम्यक दृष्टि होता है। हो सकता है कोई चौथे में जाए, कोई पांचवे में जाए, कोई डायरेक्ट सातवें में जाए, उन सबको क्या कहेंगे, प्रथमोपशम सम्यक्त्व। अब यहां ऐसे प्रथमोपशम सम्यक्त्व कौन सा जीव प्राप्त कर सकता है, यहां जनरल बात होगी तो पहले से चौथे में जाने वाले तो चारों गति के हो गए, उस अपेक्षा यहां बात चलेगी। अभी हम यहां पढ़ते हैं, अब ये दूसरे पैराग्राफ से शुरू करते हैं, पांचवें नंबर का प्रकरण अपना शुरू होगा। हमने पंच लब्धि कहा है ना पुस्तक का नाम, तो लब्धि का अर्थ पहले देखते हैं। लब्धि का अर्थ है प्राप्ति या लाभ, कुछ उपलब्धि। हम कहते हैं आपकी क्या उपलब्धि हुई, आपने ये शिविर अरेंज किया, कुछ उपलब्धि हुई कि नहीं हुई, यानी कुछ आपका फायदा हुआ कि नहीं हुआ, तो ये लब्धि कहलाते, लाभ क्या हुआ। तो हमारा लाभ अनंत सुख की प्राप्ति में है। प्रत्येक जीव कुछ लाभ चाहता है तो क्या लाभ चाहता है, आप कहेंगे हम तो पैसे के लाभ चाहते, पर पैसा क्यों चाहते, सुखी होने के लिए। तो हमारा अल्टीमेट एम क्या है, सुखी होना। तो कितना सुख चाहिए, थोड़ा चलेगा, तो नहीं कहते अनंत सुख चाहिए हमें, परिपूर्ण। मोक्ष अनंत सुख रूप है और उसकी प्राप्ति का उपाय क्या है, संवर और निर्जरा, वह भी सुख रूप ही है। कल बात आई थी ना, सुख का रास्ता भी सुखमय ही होगा, मोक्ष सुखमय है तो मोक्ष मार्ग भी सुखमय ही होना चाहिए, ये तो न्याय की बात है। मोक्ष मार्ग दुख रूप होगा और दुख सहन करते करते सुख होगा, ये बात नहीं हो सकती। इसलिए उनकी प्राप्ति होना लब्धि है। किसकी, पहले में पहले मोक्ष की प्राप्ति होना तो परिपूर्ण, वो तो लब्धि है ही है। मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी, संवर और निर्जरा से, तो संवर और निर्जरा प्रकट होना ही लब्धि कहलाएगी। जितना जितना आश्रय और बंध कम होगा उतना उतना दुख कम होगा। क्यों, हम तो ऐसा समझते हैं जितना जितना पैसा कम होगा उतना उतना दुख होगा ज्यादा। तो यहां कहते हैं कि आश्रय बंध अधिक होगा तो दुख अधिक होगा, क्योंकि आश्रय ही दुखमय है। आश्रय किसे कहते हैं,
कर्म का आना।
तो ये पुद्गल आए इसलिए आपको दुख हुआ, उसी से दुख होता है। आप क्या कहते हैं, हाँ तो जीव में क्या होता है, हाँ परिणाम क्या होता है। तो आश्रय ने, हम यहाँ भाव आश्रय की बात करेंगे, आप जो आश्रय की बात करें वो द्रव्य आश्रय कर्म आते हैं, परंतु कर्म क्यों आते हैं, राग द्वेष और मोह। मोह राग द्वेष ये जीव के भाव आश्रय है। राग भाव हम कहेंगे उसको, एक सामान्य नाम देना है तो हम कहेंगे राग परिणाम, परंतु जब राग कहेंगे उसमें मिथ्यात्व भी लेना, शुभ अशुभ भाव भी लेना। तो जीव दुखी क्यों है, अपने मोह राग द्वेष के परिणाम के कारण दुखी है। और हमने क्या माना अब तक, संयोगों के कारण जीव दुखी है, ख्याल है ना। अरे आप क्यों दुखी हो, तो कोई कहता है मैं बीमार हूं इसलिए दुखी हूं, कोई कहता है कि मुझे बच्चा नहीं है इसलिए दुखी है, बच्चे वाला कहता है मेरा बच्चा बीमार है इसलिए मैं दुखी हूं, कोई कहता है मैं परीक्षा में फेल हुआ इसलिए दुखी हूं, तो उसका दुख का सचमुच कारण क्या है, तो उसके मोह राग द्वेष के परिणाम ही दुखमय है और वही उसके दुख का कारण है, क्योंकि उसके कारण जो कर्म का आना है बंधना है, हमने देखा था बंध के समय तो उसका फल भी नहीं मिलता है, तो कर्म आए ये दुख नहीं है, वो कर्म का उदय में फिर वहां जो कोई जीव उसमें फिर मोह राग द्वेष करता है। देखो ये संयोगों को देख देख कर इसके स्वयं के जो भाव होते हैं ना, इसको संयोगी भाव कहते हैं। तो संयोग दुख का या सुख का कारण नहीं है, संयोगी भाव किसके कारण है, सुख के या दुख के, दुख के ही कारण है, भले इसको लगता है कि मुझे सुख हो रहा है, नहीं समझे, ये अनुकूलता में जो सुख भासित हो रहा है जीव को वो सच्चा सुख नहीं है, उसकी कुछ इच्छा की पूर्ति हुई ना, इच्छा दुख रूप है और उसके विशिष्ट इच्छा की और बाय चांस वो इच्छा पूर्ण हुई, सभी इच्छाएं पूर्ण होती नहीं है, बाय द टाइम एक इच्छा पूरी होती दूसरी 10 इच्छा उत्पन्न होती, वो तो दुखी रहता है। 105 डिग्री बुखार था, अभी 103 हुआ, 102 हुआ, क्या कहते हैं मुझे ठीक है, ठीक नहीं है, पहले की अपेक्षा से थोड़ा ठीक लगता है उसको, तो इसको जो संयोगों में अनुकूलता भासित होती है उसको जो सुख मानता भी है आनंदित भी हो रहा है, परंतु वो सच देखे तो दुख ही है। तो जितना आश्रय और बंध कम होगा उतना उतना दुख कम होगा, कर्म की भाषा में कहना हो तो बंध की हानि होना, ये बंध की हानि होना यानी क्या है, तो विशिष्ट कर्म प्रकृति का बंध रुकना संवर है, अभी यहां कर्म की भाषा में बोल रहे हैं, जीव के परिणामों की भाषा में बोलना है कि शुद्धि की उत्पत्ति उसको हम संवर कहेंगे, और वहां कर्म में क्या हो रहा है, पहले मिथ्यात्व अनंतानमंदी आदि अन्य अनेक कर्मों का बंध हो रहा था, अभी उनका बंध रुक गया है, जीव में मिथ्यात्व परिणाम नहीं रहा और वहां मिथ्यात्व बंध भी रुक गया है, उसको संवर कहेंगे। तो बंध में हानि हुई ना, कटौती हुई, हमारे 5 नलों में से पानी आ रहा था उसमें वो एक वहां कटौती होगी, उसमें मिथ्यात्व वाला नल बंद हो गया, तो बंध की हानि हुई, तो उसका है संवर। और सत्ता में जो पूर्व बंधे थे, अज्ञान अवस्था में जो पूर्व में कर्म बंधे थे, उसकी हानि क्यों, क्यों निर्जरा भी बढ़ गई, आने वाले कर्म यानी जो बंधने वाले कर्म वो कम हुए, उसको हम कहेंगे संवर, और जो ऑलरेडी बंधे हुए उसके अधिक मात्रा में खिर रहे, पहले कितना खिर रहे थे, एक समय प्रबद्ध बनते थे और एक समय प्रबद्ध खिरते थे, अनेक प्रकृतियों का बंध रुक गया और ऑलरेडी बंधे हुए में से अधिक मात्रा में कर्म खिरने लगे, उसको मोक्ष मार्ग वाली निर्जरा कहेंगे, पहले तो सामान्य निर्जरा थी, अब यहां मोक्ष मार्ग शुरू होता है तो अधिक प्रमाण में कर्म खिर जाते हैं, तो उसको कहते हैं सत्व की हानि। दो शब्द कौन से, बंध की हानि यानी विशिष्ट कर्म प्रकृतियों का, सभी कर्म प्रकृतियों का बंध एक साथ नहीं रुकता, सम्यक दर्शन होने पर भी कितने ही प्रकृतियों का बंध भी चल रहा है, अभी हमने चारित्र मोहनीय देखा, अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजोलन वगैरह सबका भी बंध चल रहा है उसका, परंतु कितने ही प्रकृतियों का बंध रुक गया है, ऑलरेडी जो बंधी है उसमें से अधिक निर्जरा चल रही है।
विशिष्ट मीन्स एनी पर्टिकुलर,
पर्टिकुलर विशिष्ट है ना, पर्टिकुलर, उसके नाम यहां नहीं लिए हैं, वो विषय जब जहां चलेगा तब उसकी बात आएगी, अभी तो क्या होता है उसकी बात चलेगी, लब्धि यानी कुछ लाभ हो रहा है, तो पर्टिकुलर कर्म जो मिथ्या दृष्टि को बनते थे अभी सम्यक दर्शन होने पर वो नहीं बंधेंगे, ये लाभ हुआ ना, और पहले थोड़े कर्म खिर जाते थे अभी बहुत अधिक मात्रा में खिर रहे हैं, वो भी लाभ हुआ उसका। यह कार्य सम्यक दर्शन और अधिकाधिक आत्मस्थिरता द्वारा अर्थात चारित्र द्वारा होता है। क्या कहा, ये बंध का रुकना और अधिक निर्जरा कैसे हो सकती है, सम्यक दर्शन के द्वारा होगी, और ये और ज्यादा कैसे बढ़ेगी, क्योंकि वो अधिक अधिक बंध रुकते कैसे जाएगा, तो कहेंगे ऊपर के गुणस्थानों में। तो ऊपर के गुणस्थानों में जीव कैसे जाता है, तो कहते अधिकाधिक आत्मस्थिरता द्वारा, यानी चारित्र द्वारा। चारित्र का अर्थ क्या है? अधिक एकाग्रता, आत्मा में एकाग्रता ही चारित्र है। आत्मा में चरना, रमना, ये चारित्र है। तो हम तो चारित्र किसे समझते हैं? बाह्य जो कोई आचरण है उसको हम चारित्र समझते थे। और जब तत्व ज्ञान का जब तक अभ्यास नहीं है तो ऐसा ही लगता है कि बाह्य में जो कोई संयम अंगीकार किया है यही चारित्र दशा होगी। क्यों? क्योंकि जिसकी आत्मस्थिरता अधिक है ऐसे जीवों को ये बाह्य अवस्था ऐसी होती है। जो मुनि योग्य आत्मस्थिरता है तो वो मुनि योग्य उनका आचरण होता ही है। ऐसे नहीं कि गृहस्थ योग्य रहकर, गृहस्थ रहकर मुनि योग्य आत्मस्थिरता होगी, ऐसी बात नहीं होती। तो जिनके अंतरंग में इतनी स्थिरता है उनकी बाह्य में मुनि दशा होती ही है। अब भोले जीव क्या करते हैं? अरे इन्होंने उनकी बाह्य दशा तो दिखने में आती है, अंतरंग का तो पता नहीं है। तो वो भी चाहते हमें भी मोक्ष चाहिए, तो क्या करते हैं? बाह्य दशा अंगीकार करते हैं। अब दिशा तो उल्टी ही है और दशा अंगीकार करना चाहते हैं, तो क्या होता है? कुछ नहीं हाथ लगता। अपने शास्त्र में ऐसा होता है ना कि कोई वो चावल वो कूट रही थी, तो वो कूटते समय क्या होता है, छिलके ऊपर आते हैं और चावल चावल नीचे रह जाते हैं। गांव में हो करते हैं ना वो, तो दूसरे भाई ने देखा तो क्या देखा, वो छिलके दिखाई दे, छिलके कूट रहे थे। अच्छा, तो उसने वो छिलके इकट्ठे किए और उसको कूटने लगे, तो अंदर तो चावल है ही नहीं है। ऐसे भोले जीवों का क्या होता है, क्योंकि आचरण के जो मुख्यता से चरणानुयोग के ग्रंथ में ऐसा लिखते हैं, ऐसा मुनियों को ऐसा आचरण करना चाहिए, परंतु वहां तो सम्यक दर्शन है, आत्मस्थिरता है और उसके साथ साथ उनके बाह्य आचरण के वहां उपदेश भी होता है। तो भोले जी वो बाह्य आचरण करके ऐसा मानते हैं कि हमने मुनि दशा ली है, अभी हमको मोक्ष होगा, परंतु वहां अभी सम्यक दर्शन नहीं है, आत्मा की स्थिरता नहीं है, आत्मा का अनुभव नहीं है, तो उनके हाथ में कुछ नहीं आता। थोड़ा पुण्य होगा तो होगा, परंतु यदि उसी को मोक्ष मार्ग मानते हैं तो मिथ्या तो और पनपता है। तो ये आत्मा की स्थिरता ही चारित्र है। तो चारित्र द्वारा होता है कौन सा कार्य? बंध की हानि और सत्व की हानि। बंध की हानि यानी संवर, और सत्व यानी सत्ता में पड़े हुए कर्मों में हानि, उसकी कैसे कम होगी? निर्जरा। तो ये संवर और निर्जरा कैसे प्राप्त होता है? तो सम्यक दर्शन के द्वारा और चारित्र द्वारा। परंतु किसी भी उच्च प्रकार के शुभ भाव द्वारा संभव नहीं है। सम्यक दर्शन नहीं हो, आत्मस्थिरता न हो और कैसा भी उच्च शुभ भाव क्यों न किया जाए, उससे उसके संवर और निर्जरा नहीं होगी। हाँ, पुण्य बंध होगा, पाप के बदले पुण्य बंधेगा, परंतु उसका काल लिमिटेड होगा। कोई भी पुण्य बंध करता रहे फिर वो लगातार पुण्य पुण्य बांधता रहे, ऐसा कभी नहीं होता है। नहीं तो क्या होगा, स्वर्ग में गया ना पुण्य करके, तो स्वर्ग के जीव मरकर कहाँ जाते हैं? ऊपर के स्वर्ग में जाते हैं कि नहीं जाते हैं? निर्णय करना पड़ेगा। बारहवें स्वर्ग का कोई जीव मर गया तो सोलहवें स्वर्ग में या ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? आप क्या कहते हैं? क्या मालूम नहीं आपको? आप बहुत अच्छा, आप क्या कहते वीना बेन? कहाँ जाएगा फिर? नियम से वो मनुष्य होगा या तिरंज होगा, यथायोग्य अभी कौन सा जीव कहाँ जाता है उसका सब नियम है, परंतु हम इतने देखेंगे वो मध्य लोक में आएगा। कोई भी नारकी मरकर इमीडिएट नेक्स्ट भव में नारकी नहीं होता, वो तो मरकर मनुष्य या तिरंज होता है। वैसे ही कोई भी देव मरकर इमीडिएट नेक्स्ट भव में देव नहीं होता है, वो तो मनुष्य या तिरंज में ही आता है। तो ये पुण्य हो या पाप हो उसकी लिमिटेशंस होती है। वो लगातार कोई पाप ही करता रहे या लगातार कोई पुण्य ही करता है, ऐसा नहीं होता है। इसलिए क्या कहा, ये जो संवर और निर्जरा है कितने ही भवों तक, देखो ये छड़ाला में आता है ना, करोड़ों भव तक तप तपे तो भी, क्या कहते हैं, एक एक समय में एक एक समय प्रबंध निकलेगा अज्ञानी का, बराबर। और उसने बहुत तप किया तो भी कितना खिरेगा एक समय में, एक समय प्रबंध। डिफरेंस क्या हुआ? हाँ, कुछ पुण्य बांधा, पाप के बदले पुण्य बांधा, बंध की हानि नहीं हुई क्योंकि मिथ्यात्व भी बनता रहा उसका। और कोई ज्ञानी है तो वो एक क्षण में कितना खिपाता है, असंख्यात गुना एक समय में। तो करोड़ों भौतक अज्ञानी जीव तप करके जितना कर्म खिपाता है उतना ही कर्म ज्ञानी एक समय में खिपाता है। और उसके और क्या, और वो तो अज्ञानी बांधता भी है, और इसके तो बंध कम हुआ है और अधिक कर्म खिपाता है। हाँ, मिथ्यात्व अवस्था में, मिथ्यात्व अवस्था में हमने देखा घाती कर्म तो सभी बन रहे, सभी बन रहे घाती कर्म। डिफरेंस कहाँ हुआ पुण्य या पाप में? तो कोई शुभ प्रकृतियां बंधेगी या अशुभ प्रकृतियां बंधेगी, हमने देखा था। शुभ नाम कर्म बंधेगा, अशुभ नाम, या कोई आयु बंधेगी कोई, परंतु उससे क्या होगा, उससे उसका पुण्य का फल भी मिलेगा, परंतु लगातार तो पुण्य नहीं करता रहेगा। तो पुण्य प्रकृति बांधी ना उसने, बंध में कुछ हानि नहीं हुई। घाती कर्म तो सभी बन रहे, मिथ्यात्व भी बन रहा है, अनंतानुबंधी भी बन रहा है, अन्य भी प्रकृतियां बन रही है सब। अब सम्यक दृष्टि के क्या होगा, घाती कर्म भले ज्ञानावरण बन रहा है परंतु अभी मिथ्यात्व नहीं बन रहा, अभी अनंतानुबंधी नहीं बन रहा। सम्यक तो होने पर अन्य भी आघाती में से भी 41 प्रकृतियां सब मिलकर बंध नहीं होता उसको। एक इंद्रिय संबंधी नहीं, एक इंद्रिय, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय जाति बांधेगा नहीं, बांधेगा पंचेंद्रिय जाति बांधेगा। अब मनुष्य की बात करेंगे, मनुष्य समय दृष्टि होने पर देवगति ही बांधेगा, अन्य गति नहीं बांधेगा, नरकायु तिरियंचायु वो नहीं बांधेगा। ये इतनी सारी बातें उसकी रुक जाएगी। अब ये कहां क्या कौन से पोजिशन होता है ये सब हम क्रम से देखेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, किसी भी प्रकार के शुभ विभाव द्वारा नहीं। इसीलिए लब्धिसार ग्रंथ में कहा है दर्शन और चारित्र की प्राप्ति होना ही लब्धि है। क्या कहा? सच में हमारी लब्धि किस में है? दर्शन यानी सम्यक दर्शन और चारित्र यानी आत्म स्थिरता की प्राप्ति होना ही वही लाभ है, वही लब्धि है। और हम तो अन्य अन्य लब्धि के पीछे पड़ते हैं ना, लाभ हमारा, हमने कई अन्य लाभ सोचा है। अब लब्धि शब्द अनेक भिन्न भिन्न अर्थों में या संदर्भ में शास्त्र में आता है। क्षोभम ज्ञान में लब्धि और उपयोग दो भेद पाए जाते हैं। सुना है कभी? हाँ, कहा सुना है? तत्वार सूत्र में लब्धि उपयोग भावेन्द्रियम कहा है। भावेन्द्रिय ने क्षोभम जो ज्ञान है वो लब्धि और उपयोग रूप है। कल आपने यहाँ ये दर्शन चेतना ध्यान चेतना की बात हुई ना, उपयोग वाली, उपयोग में दर्शन चल रहा हो या उपयोग में ज्ञान चल रहा हो, फिर भी लब्धि और उपयोग मिलकर वो पूरी ज्ञान की या दर्शन की पर्याय होगी। तो उपयोग हमारा अभी शास्त्र स्वाध्याय में है, फिर भी लब्धि में वो जो कोई क्षोभम जितना है और जितना उसने ज्ञान प्राप्त हुआ है उसके वो सब चलता है उसके हर पर्याय में, तो उसको लब्धि कहते हैं। उस लब्धि की यहां बात नहीं है। लब्धि शब्द कहाँ कहाँ आता है उसकी बात हम यहाँ केवल देख रहे हैं। क्षोभम विशेष को लब्धि कहते हैं, यानी विशिष्ट क्षोभम है जो पर्टिकुलर क्षोभम होता है उसको भी लब्धि कहते हैं। या उसके निमित्त से आत्मा में ज्ञान के उघाड़ रूप जो शक्ति होती है उसे लब्धि कहते हैं। यानी ये बात यहाँ नहीं है, यहाँ के लब्धि का अर्थ कुछ अलग है। और भी लब्धि का अर्थ देखते आगे। गुण प्राप्ति के अर्थ में विशिष्ट तप के प्रभाव से प्राप्त होने वाली रिद्धि को भी लब्धि कहते हैं। हम देखिए वैक्रेक रिद्धि प्राप्त हुई वो विष्णु कुमार मुनि को, और अन्य भी अनेक रिद्धियां प्राप्त होती, आहारक रिद्धि होती है कि वो चारण रिद्धि होती है, आकाश में गमन करने की रिद्धि, ये तप के कारण अनेक रिद्धियां प्राप्त होती है उसको भी लब्धि कहते हैं। उसकी भी यहाँ बात नहीं है। अब दानांतराय आदि अंतराय कर्म की पांच प्रकृति के क्षोभम से या क्षय से जो प्राप्त होते हैं कौन से, दान लाभ भोग उपभोग वीर्य, उसको भी लब्धि कहते हैं। शास्त्र में आते ना अरिहंत भगवान को नौ क्षायिक लब्धि है, मालूम है कौन कौन सी है? नहीं मालूम? नौ क्षायिक भाव कौन से बोलो नलिनी भाई, लिखे है तो बोलो ना। हाँ, क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्शन, हाँ क्षायिक चारित्र और सम्यक्त्व, क्षायिक सम्यक्त्व है ना, और दान, एक क्षायिक हर एक के आगे लगा ना, क्षायिक दान लाभ भोग उपभोग वीर्य, इसको क्या कहेंगे? नौ क्षायिक लब्धि। अनंत चतुष्टय कहते वो चार अनंत लिए हमने, उसी को क्षायिक के रूप में देखो। अनंत ज्ञान कहो, केवल ज्ञान कहो या क्षायिक ज्ञान कहो, एक ही बात है, उसी को क्षायिक लब्धि भी कहेंगे। वो प्राप्ति है ना उनको, उस जीव ने वो विशिष्ट प्राप्ति की है, लब्धि की है, तो ये नव क्षायिक लब्धि कहलाती है। देखो
इसमें फर्क क्या पड़ा क्षायिक और अनंत?
कुछ नहीं फर्क पड़ा। वो कौन सा भाव है, भाव की बात में बताना है तो क्षायिक भाव है, क्योंकि उस विशिष्ट कर्मों का क्षय हो चुका है, इसलिए उसी ज्ञान को क्षायिक ज्ञान कहेंगे, उसी को केवल ज्ञान कहेंगे। और वो कितना है ज्ञान, तो अनंत है, परिपूर्ण स्वभाव प्रकट हुआ है, उसी को अनंत ज्ञान कहेंगे। ये तो हमें तो अरिहंत का स्वरूप भाषित होना चाहिए, जब हम नमो अरिहंतानम कहते हैं, नमस्कार करते हैं ना अरिहंतों को, तो अरिहंतों का स्वरूप हमारे भावों में, हमारे ख्याल में आना चाहिए। देखो हम हमारे माता पिता का फोटो देखते हैं तो हमें उनके सारे गुण याद आते हैं, और फिर उनके उपकार भी स्मरण होते तो हमारे आंखों में पानी आता है ना। तो अरिहंत भगवान कहते हैं क्या हमें उनके वितरागता की कुछ अंदर से प्रतीति होती, कुछ भाषित होता है? नहीं, हमें ऐसा लगता है ये तो हमारे परंपरा से इनको नमस्कार करना चाहिए, ऐसा ही होता है ना। देखो
सोचते नहीं
हम, हमारे बच्चों को सिखाते हैं कि ये नमो अरिहंतानम इस तरह से बोलना चाहिए, भगवान को नमस्कार करना चाहिए। तो हम बचपन में क्या करते थे, हमारे माता पिता ने जिन भगवान को नमस्कार करना सिखाए उनके आगे हम नमस्कार, और अंदर से भी ऐसा ही कि नहीं यही भगवान है दूसरे नहीं है, सच्चे भगवान को हम नमस्कार करते। मैं मेरी बात कहती, वहां अन्य किसी भगवान को हमने वो कभी भगवान माना ही नहीं। परंतु देखो ऐसा भी हो सकता है कि वितरागी भगवान को नमस्कार करते हैं और उनके हाथ सामने हाथ जोड़कर क्या कहते हैं, ये हमारी कोर्ट में केस चल रही है वो अच्छी कर दो, हमको बुद्धि दे दो, या क्या हमें परीक्षा में पास कर दो, और क्या है, कोई कहेंगे हमको पुत्र दे दो,
लॉटरी लगा दो,
लॉटरी लगा दो। देखो मन्नत भी मांगते हैं, क्या मांगते हैं,
भौतिक चीजें,
बहुत सारी चीज, पुत्र होगा तो छत्र चढ़ाऊंगा, कब, एडवांस में कोई भगवान को पैसे नहीं। ये मेरा काम होगा तो मैं वो छत्र चढ़ाऊंगा, संगमरमर के वहां मंदिर बनाऊंगा, सब कुछ। अरे यहाँ आना है तो एडवांस में दो दो महीने एडवांस में बुक करना पड़ता है, फुल पेमेंट दे के। और भगवान के पास मन्नत मांगते तो क्या करते हैं, मेरा काम होगा तो ये ऐसा करेंगे। यानी वो अज्ञानी की मान्यता है कि भगवान कुछ हमारा कर देगा, ये सारे अपनी मान्यता में होते। देखो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा है, कुदेव विदेव कोई बाहर नहीं होते, अपने मान्यता में होते, क्योंकि हमने क्या माना है, भगवान हमारे कार्य कर देगा। नमस्कार क्यों करना है, क्योंकि अपनी नहीं, परंतु हम जिस समाज में रहते हैं, स्कूल में जाते हैं, अन्य बच्चे हैं, अन्य कोई लोग क्या मानते हैं कि भगवान ईश्वर सबका करने वाला है, और वो सुनते सुनते हमारे भी कहीं ना कहीं अभिप्राय में ये बात आ जाती है, तो भगवान के सामने कुछ न कुछ विश करना है, इच्छा अपनी पूर्ण हो जाएगी, ये अभिप्राय में बना रहता है, अपना ये अभिप्राय ही मिथ्या मान्यता है, ये अभिप्राय ही कुदेव है, क्योंकि हमने सच्चे देव के आगे हाथ जोड़कर क्या मांगा, मेरा कुछ भला कर दो, मुझे बच्चा होने दो, ये मेरे अभी नौकरी लगने दो, मुझे परीक्षा में पास कर दो, तो भगवान हमारा कुछ करता है, ये बात, ये अभिप्राय हमारा गलत है। आप कहेंगे हम कुछ नहीं मांगते, हम सम्यक दर्शन मांगते, वो भगवान देने वाले नहीं है, भगवान ने तो उपदेश दिया है कि किस पद्धति से, अरे तू स्वयं परमात्मा हो और तुम अपने स्वभाव का आश्रय करो, लक्ष्य करो, तो आप भी भगवान बन जाओगे। तो ऐसा उपदेश दे रहे भगवान। हम भगवान के पास क्यों जाते हैं? आप दर्पण के सामने क्यों जाते हैं सुबह उठ के?
अपना स्वरूप
कहाँ? दर्पण में
भगवान?
नहीं नहीं, हम लौकिक की भाषा करते हैं। दर्पण के सामने क्यों जाते हैं? अपना रूप देखने के लिए, वो झलकाता है ना। तो भगवान के पास क्यों जाते हैं? वो भी अपना रूप दिखाता है। नहीं समझे? सिद्ध भगवान क्या बता रहे हैं या अरिहंत भगवान क्या बताते हैं? तो ये तेरा असली रूप है। तो ये वहां हमारे स्वरूप की हमें झलक दिखती है, इसलिए हम उनका दर्शन करने जाते हैं। उनका दर्शन, आप आईने का दर्शन करने जाते हैं? दर्पण को देखने जाते हैं कि अपने को देखने जाते हैं? हाँ, भगवान के पास भी अपने को देखना जानने। तो हमें क्या लगता है, भगवान हमारा कुछ भला कर देगा? देखो अपनी मान्यता। भगवान के पास भी हमें अपने को देखने के लिए जाना है कि ये मेरा असली रूप है, मैं जो मान रहा था वो वैसा है ही नहीं है। इसलिए भगवान के दर्शन करते, उनका स्मरण करते, क्योंकि ये उपदेश जो है सच्चा उपदेश उनके द्वारा मिला है। तो जिन्होंने ऐसा महान उपदेश दिया है उनके प्रति हमें बहुत आदर विनय तो सहज है, इसलिए हम उनकी भक्ति पूजा करते हैं। और भोले जीव मानते हैं कि उनकी भक्ति पूजा करने से हमें कुछ लाभ हो जाएगा, कुछ हमें प्राप्ति हो जाएगी, कुछ पैसा मिल जाएगा, कुछ अपने जो मिला है हमारा वो टिका रहेगा। ख्याल है ना, ये अपनी मिथ्या मान्यता है। अब चलो आगे बढ़तेंगे। अभी हमारा विषय पंचलब्धि है, यहां से अपना विषय प्रारंभ होता है। प्रथम ऑप्शन सम्यक्त के पूर्व, सम्यक्त तो बाद में होगा, उसके पहले पहले जीवों की अवस्थाएं में क्या क्या होता है, तो उसके पूर्व होने वाली पांच लब्धि की हम चर्चा करेंगे। अब उसके नाम इस प्रकार है, मैं पढ़ूंगी पहले, फिर आपको बाद में फिर रिपीट भी करवाऊंगी। क्षोपम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोगी लब्धि और करण लब्धि। अभी हम सब दोहराएंगे। क्षोपम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोगी लब्धि और करण लब्धि। ये पांच लब्धि के नाम कौन कौन से भाई, बोलो आप। हाँ बोलो।
क्षयोपशम लब्धि,
हाँ, क्षयोपशम लब्धि,
विशुद्धि लब्धि,
विशुद्धि लब्धि, देशना,
देशना
लब्धि, हाँ, प्रायोग्य लब्धि और करण लब्धि। ये बार बार आने वाले हैं नाम, सब याद हो जाएंगे। हाँ, अब इसे कुछ अलग शब्दों में अन्य ग्रंथों में इसको लिखा है। सागर धर्मामृत नाम का एक ग्रंथ है, उसमें क्या लिखा है, संगीत्व यानी संगी पंचेंद्रिय पना, शुद्धि यानी यहाँ जो कुछ विशुद्धि की बात है, वो विशुद्धि का अर्थ क्या है वो भी देखेंगे। देशना, देशना का अर्थ होते भगवान का उपदेश, ज्ञानी का उपदेश। कर्म हानि यानी जो कर्मों में जो कोई बातें बनती है वहां पर जो कुछ स्थिति घटती है, अनुभाग जो कुछ घटता है उसकी बात है। और अस्त मिथ्यात्व, मिथ्यात्व का अस्त हो जाना, उदय मिट जाना। नियमसार ग्रंथ में उसके अन्य प्रकार से नाम बताए हैं, उसमें काल लब्धि, करण लब्धि, उपदेश लब्धि, उपशम लब्धि और प्रायोगिता लब्धि। देखो नाम अलग है, कुछ क्रम अलग है, परंतु वहां उसके विशिष्ट उसका अर्थ भेद है, इसलिए वहां क्रम भी अलग है। हम उन नामों की चर्चा छोड़कर हमने पहले जो पांच नाम देखे हैं उसी की अपेक्षा चर्चा चलेगी। इन पांच लब्धि पूर्वक, पूर्वक है पहले ये पांच लब्धि होगी और पश्चात प्रथमोपशम सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। अभी लब्धि का स्वरूप होने देखने के पहले प्रथमोपशम सम्यक्त्व की बात करेंगे हम। तो सम्यक्त्व शब्द से तुम भली भांति परिचित हो। तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम सूत्र का अर्थ हमने पहले विस्तार से देखा है। अभी ये सात तत्व की जब चर्चा की थी जैन तत्व परिचय में, वहां भी वो तत्वार श्रद्धानम समय दर्शन आदि की भी वहां चर्चा हुई थी। तो तत्वार्थ है ना, ये जो प्रयोजनभूत सात तत्व है उसका श्रद्धान वो समय दर्शन है। कहीं कहीं ऐसा लिखा है सच्चे देव गुरु शास्त्र का श्रद्धान समय दर्शन है, बात एक ही है। क्योंकि हम जब कहते हैं जीव अजीव आश्रव बंध संग निजरा और मोक्ष, तो जो मोक्ष तत्व का श्रद्धान है वही देव का श्रद्धान है, जो संवर निर्जरा का स्वरूप जानता है वही वो गुरु का स्वरूप जानता है। और ये सातों तत्वों का कथन किस में लिखा है? शास्त्र में लिखा है। तो देव गुरु शास्त्र का सच्चा श्रद्धान कहो या सात तत्वों का श्रद्धान कहो, एक ही बात है। वो केवल हमने शास्त्र में से पढ़ लिया और सच्चा माना, वो श्रद्धान नहीं। तो जब आत्मा का अनुभव होगा, इन सात तत्वों को बराबर सही पहचान कर आत्मा का अनुभव होगा, तो कहेंगे तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम हुआ उसको। अनादि मिथ्या दृष्टि जी, ये अनादि मिथ्या दृष्टि क्या होता है?
जिसने कभी पहले मिथ्या तो
हाँ, देखो क्या है, अनादि से ही सभी जीव मिथ्या दृष्टि ही है, परंतु कोई जीव सम्यक तो प्राप्त करता है, किसी का सम्यक तो छूटकर वो दोबारा मिथ्या दृष्टि हो जाता है, तब उस जीव को कहेंगे सादी, स आदि। उसके मिथ्यात्व को शुरुआत है कहीं से, क्यों? क्योंकि वो पहले कुछ काल के लिए सम्यक दृष्टि था। परंतु ऐसे जीव इसने कभी अनादि से सम्यक तो ही नहीं प्राप्त किया है, उसको क्या कहेंगे? अनादि मिथ्या दृष्टि। तो अनादि मिथ्या दृष्टि जीव सबसे पहले सम्यक तो प्राप्त करता है, तब वह औपशमिक सम्यक्त्व ही होता है। अभी हमने देखा था ना, मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का उपशम करके वह सम्यक्त्व प्राप्त करता है। तो उपशम यानी क्या करता है, कैसे करना है, ये सब बातें आएगी अभी। पहले में पहले प्रथम उपशम को हम एक एक शब्द को देखना है ना, उसके पहले केवल शब्दार्थ देखेंगे, फिर उसमें क्या क्या बातें होती है, उसका प्रोसेस क्या है, कैसा है, वो सब आएगा। सादी मिथ्या दृष्टि जीव भी, यानी जिसने पहले एक बार सम्यक तो प्राप्त करके छूट गया है, वह भी कर्मों का उपशम करके सम्यक तो प्राप्त कर सकता है। यानी उसके दो ऑप्शन है, वो तो कर्मों का क्षोभशम करके क्षोभशम सम्यक तो भी प्राप्त कर सकता है, या कोई उपशम करके उपशम सम्यक तो भी प्राप्त कर सकता है। उसके लिए क्या क्या आवश्यक कंडीशन होती है, वो बात यहाँ का विषय नहीं है। यहाँ तो दो ही बातें हैं, अनादि मिथ्या दृष्टि जीव कर्मों का उपशम करके प्रथम उपशम सम्यक दृष्टि होगा, सादी मिथ्या दृष्टि यानी एक बार सम्यक तो छूट के वो मिथ्या तो हुआ है, कर्मों का उपशम भी कर सकता है तो उसको भी प्रथम उपशम सम्यक दृष्टि कहेंगे, और कर्मों का क्षोभशम करके क्षोभशम सम्यक दृष्टि भी हो सकता है, जिसको वेदक सम्यक तो भी कहते हैं। उसके लिए दो ऑप्शन है, तो इन दोनों ही प्रकार से, कौन से, सादी हो या अनादि हो, दोनों ही प्रकार से जब विशिष्ट कर्मों का उपशम करके, विशिष्ट क्यों कहा, क्योंकि अभी अपने विषय नहीं चला ना, आगे कौन से कर्मों का उपशम करता है ये अभी हमने देखा नहीं, इसलिए विशिष्ट कहा। परंतु विशिष्ट में कौन समझना, दर्शन मोहनीय और अनंतानुबंध। उपशम करके मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक तो प्राप्त करता है, तब उसे प्रथमोपशम सम्यक तो कहते हैं। ये अनादि और सादी की बात अभी हमने देखी थी, तो उसको हम छोड़कर आगे के पैराग्राफ में जाते हैं। और कौन से कर्मों का उपशम करता है वो भी हमने देखे, तो उससे भी आगे हम देखेंगे। यानी हमने ये देखा है, देखो दो पैराग्राफ आगे इसका तात्पर्य है, मिला? इसका तात्पर्य है कि जब जीव ऊपर बताए हुए कर्मों का उपशम करके, कौन से हमने देखे, दर्शनमोनी का एक और अनंतानुबंधी, जो सादी मिथ्या दृष्टि है उसकी क्या अवस्था होती है, उसके पास तीन दर्शनमोह के तीन होते हैं, क्योंकि पहली बार जब उपशम सम्यक तो प्राप्त करता है तो मिथ्यात्व में से, अभी हमने देखा है ना, मिथ्यात्व में से सम्यक मिथ्यात्व भी हुआ, सम्यक प्रकृति भी हुआ, एक के बदले तीन प्रकृति हुई, तीनों का ही उपशम कर सकता है। तो वो तीन प्लस अनंतानुबंधी चार, तो कोई जीव सात का उपशम करके उपशम समय दृष्टि होगा, या
पांच का
अनादि वाला है वो एक मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी चार, ये पांच का उपशम करके समय दृष्टि होगा, तो वहां कहेंगे पांच या सात प्रकृति का उपशम करके। सात ये ऐसा है, जब पहले में पहले उपचम सम्यक दर्शन हो जाता है तो मिथ्यात्व कर्म तो सत्ता में है, उपशमित है। उपशमित का अर्थ उदय में नहीं आ रहा है, सत्ता में पड़ा है, उदय में है नहीं है। अंतर्मूर्त के लिए उसका उदय मिट जाएगा और यहाँ जीव के सम्यक्त्व की प्राप्ति होगी। जहाँ उदय है वहां मिथ्यात्व भी परिणाम चल रहा है, अभी उसका उदय भी मिट गया और यहाँ जीव को सम्यक्त्व भी हुआ है। सम्यक्त हुआ है तो ये उपशमित जो पड़ा है कर्म, उसमें क्या होता है, मिथ्यात्व में से वो टर्न होता है, संक्रमित होता है, तो सम्यक मिथ्यात्व तैयार होता है और सम्यक मिथ्यात्व और टर्न होके सम्यक प्रकृति तैयार हुई, तो एक में से तीन प्रकृति हो गई। ऐसा जीव अभी मिथ्यात्व में आ गया तो अभी उसकी कितनी प्रकृति है सत्ता में, तीन। अब उसको प्रथम उपशम सम्यक तो प्राप्त करना है, फिर क्या करेगा, वो तीन को एक साथ उपशमित करेगा, ख्याल है ना। तो इसलिए कहे किसी के दर्शन मुंह की एक प्रकृति है और किसी के तीन है, तो उसके साथ अनंतानुबंधी चार को तो उपशमित करता ही करता है।
बात तो नहीं होता है, जो शादी मिथ्या दृष्टि जो तीन टुकड़े हुए हैं, जब फिर से मिथ्यात्व में जाते हैं तो पहला मिथ्यात्व घोर मिथ्यात्व व्हाटएवर तीन के बदले वो एक ही ऐसा।
हाँ, वो तीन के जब मिथ्यात्व में जाता है तो क्या तीन का फिर एक नहीं होता? हाँ होता है, परंतु उसको लिए असंख्यात वर्ष चले जाते हैं, उल्टा उसका उल्टा संक्रमण चालू हो जाता है। मिथ्यात्व में जाने पर क्रम से उसका एक अंतर्मूर्त में शुरू होता है प्रोसेस। क्या होता है, सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व जो हुआ है ना मिथ्यात्व में से, वो उल्टा मिथ्यात्व में टर्न होना चालू हो जाता है, पर वो प्रोसेस कम्प्लीट होने के लिए बहुत वर्ष लगते, असंख्यात वर्षों तक तीन टुकड़े बने रहते। ये बातें आएगी क्रम से।
हाँ,
कौन सा
जो सारी मिथ्या,
सारी मिथ्या दृष्टि,
तो हाँ, वो अनंतानुबंधी की चार प्रकृति भी उपशम नहीं हुई है।
हाँ, आपका कहना है ये जो सारी मिथ्या दृष्टि है, क्या अनंतानुबंधी की उसकी उपशम नहीं हुई है? जब उसने उपशम सम्यक तो प्राप्त किया था उस काल में उसका उदय नहीं हो रहा था, परंतु वो भी सत्ता में पड़ी थी। मिथ्यात्व में जाता है फिर उसका उदय भी शुरू हो जाता है, जैसे मिथ्यात्व का उदय शुरू हो जाता है दोबारा, वैसे अनंतानुबंधी का भी उदय शुरू हो जाता है।
तो एक एमके एक वक्त सम्यक्त्व था, एक पछि मोक्ष तो था।
हाँ, आपका प्रश्न है, हमने तो सुना है एक बार सम्यक्त्व होगा तो मोक्ष तो होगा ही, बिल्कुल सही है। तो अर्धपुद्गल परावर्तन काल के अंदर वो जरूर मोक्ष में जाएगा ही। कितने काल में? अर्धपुद्गल परावर्तन काल, वो कितना काल है? अनंत। हाँ, ये डेफिनेट है, अभी उससे उसका अधिक काल है नहीं, नहीं ये बात सही है। हमने अभी तक अनंत परावर्तन किए, द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, भव परावर्तन, भाव परावर्तन, काल परावर्तन, वो सब अनंत बार किए। अब जब सम्यक को प्राप्त होता है, कोई जीव बाय चांस वो मिथ्यात्व में गिर भी गया तो अधिक से अधिक कितना काल रहेगा? अर्धपुद्गल। और उसके काल पूरा होने के पहले पहले वो मोक्ष जाएगा ही गारंटी के साथ, भले कितना ही काल वो निगोद में बिताएगा, क्योंकि इतने काल तक तो पंचेंद्रिय रह नहीं सकता है, तो फिर दोबारा त्रस में भी आएगा, कितने बार वो एकेंद्रिय में भी चला जाएगा, फिर भी अब इससे अधिक काल उसका संसार में नहीं है रहना। इसमें बहुत सारे बातें बन सकती है, और जरूरी नहीं कि वो मिथ्यात्व में जाएगा ही, हो सकता है अनादि मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक दर्शन प्राप्त किया और उसका सम्यक दर्शन छूटा ही नहीं और वो मोक्ष में चला गया। हो सकता है उसी भव में गया, हो सकता है और चार पांच भव, दस भव करके गया। देर आर सो मेनी पॉसिबिलिटीज, अधिक से अधिक क्या हो सकता है, कम से कम क्या हो सकता है, इसका शास्त्र में वर्णन होता है। हर एक जीव की अपनी जो पर्यायों का क्रम है वो अलग अलग है, किसी को पहले सम्यक दर्शन हुआ इसलिए वो पहले मोक्ष चला जाएगा, ऐसी बात नहीं है,
लाइन नहीं है। उधर लाइन नहीं है।
देखो अभी हम क्षणिक राजा की बात करेंगे, चेलनारायण ने पहले से सम्यक दृष्टि थी, है ना, क्षणिक तभी तो मिथ्या दृष्टि था, मुनि के ऊपर उपसर्ग किया, सातवें नरक का बंद किया, तो बाद में उसको पछतावा हुआ, फिर सम्यक दृष्टि हुआ, फिर क्षायिक सम्यक दृष्टि हुआ, फिर तीर्थंकर प्रकृति का बंद भी करने लगा, पहले समय दृष्टि कौन हुआ था? चल नारायण, वो भी समय दृष्टि है तो कहाँ का बंद, भव का बंद किया होगा उसने, कहा देव पर्याय में चले, उस भव में तो मोक्ष नहीं हुई ना, उसका मोक्ष नहीं हुआ, देव में चला गए तो वहां तो सागरों की आयु, समय दर्शन के साथ गए हैं तो सागरों की आयु है अभी वहां, जिस किसी स्वर्ग में गया होगा जीव। अब ये श्रेणी के राजा कहाँ चले गए? नरक में। आयु कितनी वहां? 84,000 वर्ष। वहां से आएंगे यहाँ मनुष्य भव में और मोक्ष चले जाएंगे। अभी वो तो सागरों तक वहां पड़े, ख्याल है ना। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि अरे हम तो बहुत पीछे है, वो तो कितने आगे बढ़ गया। हम तो ऐसा लगता है अरे ये तो सालों से अभ्यास कर रहे हैं, हम कुछ नहीं जानते, हमारा क्या होगा, कुछ नहीं है। और प्रत्येक जीव की अपनी अनादि अनंत जो पर्याय है वो सुनिश्चित है। किसकी कैसी पर्याय होगी, कब होगी, कुछ नहीं कह सकते। अब हमारे सामने कोई चींटी घूम रही है, हो सकता है कि वो हमारे पहले मोक्ष चली जाए, अभी तो उसकी पर्याय कितनी हीन है, ख्याल में आता है ना। तो एक दूसरे की ओर देख के कोई नाराज होने की या घबराने की भी जरूरत नहीं है, और कोई इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स रखने की भी जरूरत नहीं है। हरेक का अपना अपना पर्याय क्रम है। हमारी जो अभी बात आपने पूछी थी ना, त्रिकाली शुद्ध स्वभाव का लक्ष्य करने से पर्याय में शुद्धता की प्राप्ति होती है, वो कैसे होती है, उसका क्या क्रम है, उसके लिए कौन कौन सी पर्याय होती है, कैसे उपदेश होता है, किस तरह से उस पर विचार होता है, ये सब अभी इस पुस्तक में बात आने वाली है। आगे के वो कर्म के डिटेल्स नहीं भी समझे, परंतु समय दर्शन किस विधि से होता है ये पूरा इसमें आने वाली बात है। अब अपना तो समय पूरा हो गया है, क्रम से हम इसको देखेंगे।
चलती
चलती 2400 भगवान की जय।